وآله الطاهرين. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کی تفسیر موضوعی میں ابلیس و شیاطین اور ان کے اوصاف و احوال قرآن کریم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے. ہم نے گزشتہ درس میں وہ تمام آیات کریمہ جن میں ابلیس کا تذکرہ وارد ہوا ہے اس کو سیاق کے ہمراہ ملاحظہ کیا اور چند نکات ہمارے سامنے خلاصتاً سامنے آئے. پہلا امر یہ تھا کہ ابلیس وہ ملائکہ میں سے قرار پایا اور جب قرآن کریم نے ملائکہ کو حکم دیا تو وہ بھی ان میں شامل تھا. یہ بحث مفسرین میں ہے کہ اصل اس کی ملائکہ میں سے ہے یا اصل اس کی ایک اور نوع جو قرآن نے ذکر کیا جنات اس میں سے ہے. علماء میں اختلاف ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوع اجماع اور اتفاق کا ادعا کیا ہے کہ تمام مکاتب اسلام بالخصوص مکتب تشیع اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن برخلاف قول ہمیں مل جاتا ہے شیعہ علماء میں ہی بعض قائل ہیں کہ جن کا کلمہ ہر جگہ یکساں معنی میں نہیں ہے. ایک دفعہ جن کا کلمہ ایک خاص مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے جنات سے ہم تعبیر کرتے ہیں، جن کہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور ایک دفعہ کلمہ جن پوشیدہ کے معنی میں آتا ہے. لہذا اس معنی میں کہ وہ اس کی حقیقت پوشیدہ تھی اس لیے اسے جن کہا گیا. وإلا ملائکہ دو طرح کے ہیں، ایک ملائکہ معصوم ہے، وہ ملائکہ سماوی اور سماوی میں بھی جو عرش کے ساتھ مختص ہیں یا خصوصی جیسے جہنم کے نگہبان ہیں، اس اصناف کے ملائکہ جو ہیں یہ فقط معصوم ہیں. بقیہ ملائکہ کا معصوم ہونا لازم نہیں ہے، اور اس کا شمار انہی میں سے ایک ہوتا تھا. یہ عرضی ملائکہ میں سے ممکن نہ کرا، یہ ایک قول میں بیان کر رہا ہوں. وہ جو معروف قول کے مقابلے میں ہے وہ یہ قول ہے. معروف قول تو یہ ہے کہ ملائکہ معصوم ہیں اور یہ جنات میں سے تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے ایک جگہ پہ پہنچا. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ دو طرح کے ہیں، ایک ملائکہ سماوی، اور سماوی بھی سارے معصوم نہیں ہیں. آسمانی ملائکہ میں بھی وہ ملائکہ کہ جو عرش کے ساتھ مختص ہیں، عرش الہی کے ساتھ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا ہے، یا وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے ساتھ مختص ہیں، یا وہ کہ جو جنت یا جہنم کے نگہبان ہیں، یہ معصوم ہیں. لیکن جو عرضی ملائکہ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، اور اس کا شمار انہی میں ہوتا تھا، اور اس نے یعنی وہ گناہ کا اختیار رکھتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، اور وہ ادھر عبادت کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ خصوصی جو بالا درجے کے فرشتے تھے ان میں اس کا شمار ہونے لگا. تو قرآن نے فکان من الجن اس وجہ سے کہ یہ ان میں پوشیدہ خصوصیت کا مالک تھا، نہیں تھی آشکار، بعض نے یہ تعبیر کیا. بہرحال یہ دو قول آپ کی خدمت میں بیان کیے. خلاصتاً عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ ابلیس چونکہ ملائکہ ہی کے صنف میں اسے شمار کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا. سجدے سے انکار کی یقیناً کوئی وجہ ہے، کیونکہ قرآن کا یہ واقعہ ہمیں خالی الجھانے کے لیے نہیں ہے. قرآن کا یہ واقعہ ہماری زندگی کی تربیت کے لیے ہے، نشوونما کے لیے ہے کہ اس واقعے میں جو بیان ہوا ہے اخلاقی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، وہ ہر وقت انسان سے گزر رہا ہے، انسان کے اوپر وہ جاری ہے، گزر رہا ہے، درست ہے؟ لہذا اس پہلو کو آپ مد نظر رکھیں. لہذا ابلیس نے انکار کر دیا. انکار کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس نے اپنے وجود میں قیاس کیا، باطل قیاس کیا، اپنے آپ کو آگ سے خلقت کی بنیاد پہ بالاتر قرار دیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلقت کی بنیاد پہ حقیر قرار دیا. اور اس قیاس کی کیا وجہ تھی؟ تکبر کیا. اس لیے قرآن نے ذکر کیا ابا واستکبرا. یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں کہ تکرار کے ساتھ قرآن میں تقریباً دو تین جگہوں پہ یہ بات گزری ہے، اللہ ابلیس ابا واستکبرا، یا خالی ایک جگہ پہ آیا اللہ ابلیس ابا، اس نے انکار کیا. بس انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ تکبر کا مرض تھا. بس یہ جو مرض ہیں، یہ امراض، یہ پھل دیتے ہیں، یہ نتیجہ دیتے ہیں، بالفاظ دیگر جو اس کے وجود میں قیاس کی یہ جو قباحت پیدا ہوئی، یہ جو قیاس کا شر پیدا ہوا، یہ جو اس نے قیاس اور مقایسہ باطل کیا، اس کی بدبو پیدا ہوئی، یہ کہاں سے اٹھا گند اور بلا اور یہ شر کس جگہ سے اٹھا؟ اس کا منبع کیا تھا؟ اس کا منبع مرض تکبر تھا. اگر مرض تکبر اس کے نفس کو لگ گئے اور اس کے نتائج یہ نکلیں گے، تو کیا بشر میں سے کسی بشر کو اگر یہ مرض تکبر لگے تو اس کے وجود میں یہ گندگی نہیں پھیلے گی؟ یقیناً وہ یہی تو عمل انجام دے گا اپنے وجود میں، باطل قیاس کرے گا. اس قیاس کی بنیاد پر اگلا اس نے کیا جرم انجام دیا. قیاس باطن میں کیا، ظاہر کس طرح سے نکلا وہ قیاس؟ انکار کی صورت میں. اس حکمت کو سمجھنا چاہیے، الہی حکمت کو. تکبر کی بنیاد پہ اپنے وجود میں غلط قیاس کریں گے، اس غلط قیاس اور غلط مقایسے کا، غلط جو ہمارا کمپیریزن ہے، اس کا نتیجے میں کیا نکلے گا؟ یا انتقام اور دشمنی نکلے گی، یا تہمت نکلے گی، یا غیبت نکلے گی، یا انکار نکلے گا. مختلف چیزیں ہیں کہ جو سامنے برآمد ہوتی ہیں. درست ہے؟ اس لیے جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ مدارج ہیں. اسی لیے امراض جو ہیں ان کی پھر نیچے قسمیں ہیں. ہر تکبر ایک طرح کا نہیں ہے. آئمہ علیہ السلام کی روایات میں تکبر کی قسمیں ہیں، جیسے اصول الکفر آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں، تین ہیں: تکبر، حسد اور حرص. تکبر آپ نے دیکھا، ابلیس حسد بھی کرتا ہے. حسد کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ جو ہمارے ہاں صحیح سنت طریق سے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا الخصال میں، اور شیخ اللیثی نے، 6ی صدی ہجری کے معروف عالم ہیں، عیون الحکم، ان کی کتاب ہے عیون الحکم والمواعظ، اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے، اذا قام الرجل الى الصلاة، جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو ایک سیکنڈ میں نمازیں پڑھ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، اصل میں پیچھے کیا چیز ہے؟ ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ نماز کے لیے کھڑا ہو. اس لیے اس حدیث کے اوپر غور کریں، اذا قام الرجل الى الصلاة، جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اقبل ابلیس ينظر الیہ، تو ابلیس اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ابلیس اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حسدن، حسد کے مارے دیکھتا ہے، حاسدانہ نگاہ ڈالتا ہے. صحیح، حسد سے دیکھنا. کس چیز کا حسد؟ کیونکہ حسد ہمیشہ ایک کمال کے اوپر ہوتا ہے. اب کمال وہ ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن جب بھی کوئی شخص حسد کرتا ہے، اگلے کو کسی نفع یا کسی کمال میں پاتا ہے، تو وہ اس بات کے اوپر جلتا ہے کہ کیوں یہ کمال یا نفع اس کے پاس ہے. بس یہ اچھی چیز اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ کیوں اسی کی بس تعریفیں ہو رہی ہیں، میری تعریفیں نہیں ہو رہی، یہ حسد ہے. حسد کا مرض لگا ہوتا ہے. اگر انسان تزکیہ نفس نہ کرے، یہ تو ساری مدت لگا رہے گا، مجتہد بننے سے، مفسر، محدث، یا عالم، فاضل، عابد، مجاہد بننے سے تو یہ مرض نہیں چلا جاتا، تزکیہ نفس کے ذریعے سے یہ مرض جاتا ہے. لہذا کیا کرتا ہے؟ حاسدانہ نگاہ. اب وہ کیا کمال ہے جس کی وجہ سے ابلیس حسد کر رہا ہے؟ آگے قرآن کریم یہ روایت اہل بیت علیہ السلام خود اس کی تشریح کرتی ہیں، لما یرا من رحمت اللہ التی تغشاہ، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت نے مکمل طور پہ اسے گھیرے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ نماز نہیں پڑھے گا. جیسے کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے تو نماز ترک کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رحمت الہی سے دور ہے. لہو لعب نے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر کے ابلیس کے قریب کیا ہوا ہے. جب بھی انسان نماز کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ حسد کے مارے تڑپتا رہتا ہے ابلیس، اور حسد کرتا ہے کہ کیوں یہ اللہ کی رحمت اسے گھیرے ہوئے ہے. اس لیے وہ اس حسد کی وجہ سے نماز کے قریب کسی کو نہیں جانے دیتا. کیونکہ نماز واحد عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادات کی خصوصیت پائی جاتی ہے. ایسی جامع عبادت آپ نہیں لا سکتے. مثلا اس میں ذکر الہی بھی ہے، اس میں مناجات الہی بھی ہے، اس میں دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں تلاوت قرآن کریم بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے. بہت جامع عبادت ہے. اس لیے تمام اعمال آپ اٹھا کے دیکھیں جو کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، उसमें सबसे ज़्यादा नमाज की ताकीद है, क्योंकि इसी में दुआ है, दुआ लंबी आप मांगे, इसी में जिक्र है, इसी में इस्तग़फार है, इसी में तौबा है। तो ये है, आपने देखा कि हसद करता है। अलबत्ता दिलचस्प एक रवायत और भी है, ये भी आपकी खिदमत में बयान कर दी जाए। तोहफुल उकूल में इब्ने शुबा हर्रानी ने इस रवायत को जिक्र किया है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। तोहफुल उकूल किताब है। हसद की दो किस्में हैं, क्योंकि इसी वाक़े से मरबूत है, और यहाँ पे ये नुक्ता बयान करना मकसूद है कि अभी चूंकि हमारा मौजू तकब्बुर और हसद को बयान करना नहीं है, वाइल्ला रवायात मोतबरा में आया है कि हसद जो है वो याकुलुल ईमान, ईमान को खा जाता है हसद। अल हसदो याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नारो अल हतबा, कि जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। इसलिए जब भी आप कोई बारबेक्यू के लिए जाएं और कोयला जलाएं या लकड़ी जलाएं, तो इस पे गौर करें, आग कैसे सालिम लकड़ी को खा रही है। जैसे आग खा जाती है, हसद इसी तरीके से खा जाता है। इसकी एक और अंदाज में तशरीह करें, जो अभी आपकी खिदमत में मराहिल जिक्र किए कि तकब्बुर बुनियाद बना इनकार का, तो हम इस तरीके से अगर तरतीब बनाएं तो कह सकते हैं कि हसद एक मरज है। अगर वो मरज लगा हुआ हो इंसान को, तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ तरह के उमूर इंसानी वजूद में जन्म पाएंगे। मुख्तलिफ तरह के कभी ख्यालात हैं, कभी मंसूबे हैं, नफरत है, कीना है, बुग्ज है, अंदर इस्तराब है, जलन है। ये जो नफरत और बुग्ज है, फिर ये जाहिर कैसे होगा? मुमकिन है कभी बड़ी अच्छी दोस्ती करके नुकसान पहुंचाना। इसलिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हासिद वो गुस्से में ही हो। नहीं, हासिद क्या होता है, वो आपके मिलनसार दोस्त बन के आता है, हमदर्द बन के आता है, नासिह बन के आता है, लेकिन पीछे से नुकसान पहुंचाना चाहता है। और हसद वाहिद ऐसी बीमारी है, जब हासिद हसद करना शुरू कर दे तो वो जिससे हसद कर रहे उसे नुकसान पहुंचा के रहता है, या किसी न किसी दर्जे का नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। इसलिए कुरान करीम में पनाह किससे मांगी गई है, वमिन शर्र हासिदिन इज़ा इज़ा हसद, जब वो हसद करने लगे तो हासिद से पनाह मांगो अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन रिवायत में इधर वारिद हुआ है, हसद दो तरह के हैं, हसद दो तरह के, अल हसद व हसदान, हसद व फितनतिन व हसद व गफलतिन। एक फितने का हसद है और एक हसद गफलत है। फअम्मा हसदुल गफला, गफलत वाला हसद कौन सा है? कमा कालतिल मलाइका हीन क़ाल अल्लाह, जब अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया तो मलाइका ने कहा कि अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ या बना रहा हूँ। कालू, तो उन्होंने क्या कहा, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, उसे ज़मीन के ऊपर अल्लाह तो खलीफा बनाएगा जो फसाद बर्पा करे ज़मीन पे, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाए ज़मीन पे, व नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुक़द्दिसु लक, कमाल तो हमारे पास है। अपना कमाल जिक्र किया और उनका फसाद जिक्र किया। तो अपना कमाल का जिक्र कि हम तेरी हम्द के हमरा तस्बीह भी अंजाम देते हैं और तेरी तकदीस बजा लाते हैं। इजअल यानी इजअल ज़ालिकल खलीफा मिन्ना, खुद रिवायत ये बयान कर रही है। इस जुमले का मतलब ये बनता है कि अल्लाह हम में से खलीफा करार दे, क्यों बशर से खलीफा करार दे रहा है। वलम यकूलू हसदन आदम में जहतल फितना, फितने की जेह से उन्होंने आदम से हसद नहीं किया था, क्योंकि हसद हुआ ना कि आदम बन रहा खलीफा, हम नहीं बन रहे, कमाल किसे मिल रहा है, आदम को, तो हमें नहीं ये कमाल मिल रहा, तो ये फितने की जेह से नहीं था। वर्रद वल जहूद, और वह इनकार की सुमर में नहीं था कि आदम का इनकार कर दें या आदम से दुश्मनी करें। वल हसद अस्सानी, वो जो हसद फितना है, अल्लज़ी यसीरु बिहिल अब्दु इलल कुफ्र व शिर्क, जो बंदे को कुफ्र और शिर्क तक पहुंचा देता है। ये याद रखें कि ये तीन इतने ख़तरनाक मरज़ हैं कि जो इंसान को ईमान से निकाल के कुफ्र और शिर्क तक पहुंचा देते हैं। आप अहादीस मुबारक उठा के देखें, तकब्बुर के बारे में भी यही कलिमात वारिद हुए हैं, जो हसद के बारे में वारिद हुए हैं कि ईमान को खा जाता है। इधर भी ये बयान फरमा रहे हैं इमाम कि जो बंदे को कुफ्र और शिर्क, आबिद को कुफ्र और शिर्क तक पहुँचा देता है, फहुआ हसद इबलीस, ये इबलीस का हसद था। फिर रद्द ही अल्लाह, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو رد کیا، وہ اباحی یعنی سجود لی آدم، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک بیان تھا، اسی سے اب ہم خلافت کے مسئلے کے اوپر منتقل ہو جائیں۔ اصل جھگڑا کیا چل رہا ہے اس کو سمجھیں ہم۔ اس دنیا کے اندر جو ظالم ہیں انتہائی شقی اور ظالم نظر آتا ہے، کیسے ظلم و ستم دنیا کے اندر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک ڈاکومنٹری ابھی دکھا رہے تھے افریقی ممالک کی، ادھر انہوں نے کوئی 70,000 کے قریب بندے قید کیے ہوئے ہیں، اور ایک کمرے میں کتنے بندے ہیں؟ ایک کمرے میں اگر 60 یا 70 بندے آ سکتے ہیں تو انہوں نے تقریباً 700 کے قریب بندے گھسائے ہوئے ہیں اس میں، اور ان کے لیے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، لیکن گیس اور بڑی دیگچی اور پانی کا اہتمام ہے، تو اب وہاں کھانا پینا نہیں ہے، تو وہ قرہ ڈالتے ہیں کہ جس کی باری آئے گی اسے ماریں گے اور اسے پھر کھاتے ہیں۔ بعض ہیں جو اکڑ دکھاتے، کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے وہ بنا کے کھا لیے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، اور اس طرح سے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ظلم و ستم کی انتہا ہے، انتہائی بدترین ظلم و ستم ہے۔ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس دنیا کے ظلم و ستم، جیسے یہ ممالک کو تباہ و برباد کرنا ہے، کہ امریکہ کہتے ہیں کہ ہر سال کئی من گندم جو ہے، سابقہ یہ بات تھی البتہ، سابقہ دہائیوں میں اس طرح ہوا ہے، کئی من گندم سمندر میں بہا دیتا تھا، کیونکہ اگر یہ بیرونی ممالک میں منتقل کر دی گئی اور لوگوں کا پیٹ بھر گیا تو پھر یہ ہمارے ماتحت نہیں رہیں گے۔ بھوک اور افلاس طاری کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے قابو کیا ہوا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی ترین چیزیں اسلحہ اور منشیات ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ وافر طور پہ جگہ جگہ تک جو پہنچائی گئی ہیں وہ یہی دو چیزیں ہیں، وہ اسلحہ اور یہی منشیات ہیں۔ یہ جو تیسری چیز ہمارے پاس آج کے دور میں آئی ہے، موبائل، دنیا میں مہنگی ترین چیز فلم انڈسٹری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیمرے کتنے مہنگے ہیں، اداکاروں کو کس قدر زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ وائرل ہونے والی چیزیں کیا ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں۔ نیٹ موجود ہے، کلپس کے فساد موجود ہے۔ یہ ظلم و ستم، یہ فحشت گری، یہ پوری دنیا میں افلاس۔ اگر پوری دنیا میں فقط اور فقط کھانے پینے کی چیزوں میں امانت داری کا خیال رکھا جائے، ایک بندہ بھی فقیر دنیا میں نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی۔ حالانکہ پوری دنیا میں خشکی کا حصہ کتنا ہے؟ 29%، 28 یا 29% ہے، پورا 30% بھی نہیں ہے۔ 70% کیا ہے؟ پانی۔ اس 29% کے اندر بھی جو بشر رہتا ہے وہ شاید 5 سے 10% کے اوپر بھی نہیں رہ رہا۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں، بڑا ایک آبادی والا ملک ہے، آپ لاہور شہر سے کتنی دیر میں نکل آتے ہیں؟ بہت ہوا اگر ٹریفک ہٹا دیں، ایک کونے سے باہر نکلنے میں 40-50 منٹ لگیں گے۔ یعنی لاہور کا پورا ایریا، کراچی کا پورا ایریا اگر آپ لیں، ممکن ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کہہ دیں، لیکن جو خالی زمین پڑی ہے وہ کتنی ہے؟ اس کے مقابلے میں جو بھری ہوئی آبادی کا ایریا شہر ہے، اس خالی سرزمین کے مقابلے میں ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے بس۔ اسی طرح سے دیگر ممالک بھی ہیں، نیچے خشک زمین پڑی ہوئی ہے لیکن رہنے کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ ایک پھل کا درخت اتنا پھل دیتا ہے، اتنا پھل دیتا ہے، پورا محلہ استفادہ کر لیتا ہے، اور اگر 10 پھلوں کے درخت ہو تو وہ تاجر بن جاتا ہے۔ اور اس وقت ہزاروں کیا لاکھوں درخت دنیا میں آباد ہیں، فصلیں در فصلیں آباد ہیں، لیکن کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ 70% پانی کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے، اور پانی میں مچھلی ہے، مچھلی گوشت میں مہنگے ترین غذا ہے۔ کیوں اتنی مہنگی ہے جبکہ سمندر آپ کے پاس سب سے زیادہ موجود ہے؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ظلم و ستم عجیب پھیلا ہوا ہے دنیا میں۔ اس سارے ظلم و ستم کا کیا ہے؟ ایک طرف دیکھیں کھیل کود کو خوب ابھارا ہوا ہے، دوسری طرف سے شہوت کو ابھارا ہوا ہے، تیسری طرف سے غربت اور فقر آئی ہوئی ہے، چوتھی طرف سے غیر امنیت ہے، قتل و غارت، کرپشن، چینا چپٹی، چوری چکاری، یہ ساری کی ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مسئلہ پیچھے کہاں پر ہے؟ مسئلہ اسی واقعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں نتیجہ، مسئلے کا جواب اسی واقعے میں ہے۔ دشمنی ہے، سرزمین دشمنی ہے زمین، یہ تو رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی میدان جنگ میں کوئی اچھے اچھے گھر بنانے لگ جائے، ہے میدان جنگ اور وہ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو رہنے سہنے اور ہمیشہ کی زندگی کے خواب دیکھنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اتارا، قرآن کے واضح الفاظ ہے نا، اہبطا بھی ہے اور اہبطو بھی ہے، اہبدو کہ اتر جاؤ تم، ہبوط کہتے ہیں اترنے کو، عروج کہتے ہیں چڑھنے کو، یا صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، ہبوط کسے کہتے ہیں؟ اترنے کو کہتے ہیں. اب آپ اس کو ملاحظہ کریں کہ اگر ہبوط کا حکم دیا گیا ہے، نزول کا حکم دیا گیا ہے، تو کس جگہ پہ اتار رہے ہیں؟ اس اتارنے کے طور طریقے، ادھر رہنے کے طور طریقے، ادھر جینے کے سلیقے، وہ کیا نہیں بتائے گئے؟ تو اس لیے قرآن نے اس کی پوری خبر دی کہ ایک ایسی جگہ پہ اتار رہے ہیں جس کی خود فرشتوں نے ہمیں خبر دی. وہ کیا تھی فرشتوں نے جو خبر دی؟ آپ نے ابھی آیت میں پڑھا، یفسکو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس میں کیا اتر کے کرے گا، خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز حسین، خوبصورت، کمال کے درجے کے اوپر فائز بنائی کہ اس سے بہتر چیز خلق نہیں ہو سکتی تھی جو اس دنیا میں خلق ہوئی ہوئی ہے، اس سے بہتر نہیں وجود میں آ سکتی تھی. اگر آ سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خلق فرماتا. لہذا یہاں پہ فساد کس نے برپا کیا؟ انہوں نے. بس یہ جگہ ایسی ہے کہ جو سرزمین فساد بنے گی، ایسی ہے کہ جہاں پہ خون بہایا جائے گا، ایسی ہے کہ جہاں پہ آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس جگہ پہ سب کو اتار دیا. اب اتار کے ہمیشہ رکھا، ہمیشہ رکھے تو پھر تو یہ جہنم ہوتی ہمارے لیے. صحیح ہے. اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الی حین متاعن الی حین، اس جگہ پہ بھی نعمت دی لیکن ادھر کی ہر نعمت کو متاع کا، متاع کہتے ہیں ایک جگہ پہ آپ نے مختصر وقت میں رہنا. مثلا اس کمرے میں آپ نے 4 گھنٹے رہنا ہے، آپ کو بجلی ہے اور پانی ہے اور دیگر سہولت کی چیزیں دے دی، یہ کیا چیزیں کہلائیں گی؟ متاع. اب آپ ان میں سے کوئی چیز لے کے تو نہیں ساتھ جائیں گے، سب چیزیں چھوڑ کے جائیں گے. تو متاع اسی دنیا میں تر کر کے انسان آگے چلا جاتا ہے. لہذا زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ عارضی طور پہ میدان امتحان، کئی نام ہیں اس کے. اگر اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے، آگے فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا. یہ جو جگہ ہے زمین، کیا ہے؟ اول میدان امتحان اور آزمائش ہے. بعض ایسی ہوتی ہے نا، یہ جو فلمیں بھی عجیب و غریب سی انہوں نے بنائی بھی ہیں، کیونکہ وہ اپنے کتابوں کے اور افکار اور نظریات سے وہ استفادہ کرتے ہوئے پھر خیالی دنیا کی فلمیں بناتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ کہ آپ فلمیں ایسی ہیں کہ اچھا اب اس جگہ پہ ہم نے 10 گھنٹے رہنا ہے، اس کے بعد اگلی جگہ کے اوپر منتقل ہو جائیں گے، ادھر اتنے گھنٹے رہنا ہے، پھر ادھر اتنے گھنٹے رہنا ہے. زمین ہمارے پاس اسی طرح سے ہے. زمین ایک مرحلہ زندگی گزارنا ہے، الہین مستقر ہیں ادھر لیکن ایک مدت کے لیے. اچھا، یہ زمین کی حیثیت کیا ہے ہمارے لیے؟ اول مقام امتحان اور آزمائش، دوسرا ہے مقام مبارزہ ہے. یہ ہر ٹائم حق اور باطل کا مبارزہ، ہر ٹائم ابلیس اور خلیفۃ اللہ اور ان کے ماتحت لشکروں کا جھگڑا، ہر وقت یہ چل رہا ہے، ہر وقت، کسی آن یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. میدان مبارزہ ہے، میدان سکون نہیں ہے. تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ میدان فتنہ ہے. یہ ہر ٹائم نعمت بھی فتنہ بن جاتی ہے، مصیبت بھی فتنہ بن جاتی ہے. تیسرا کیا ہے؟ مقام فتنہ ہے. یہ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی، اس کا ایک نچوڑ آپ کی خدمت میں ذکر کر، بس یہ زمین ابھی ادھر ہی ہم توقف کرتے ہیں. مقام فتنہ، اس جگہ پہ بھیج دیا. بھیج دیا تو آزمائش کیا ہے؟ اگر بھیج دیا تو مبارزہ کیا ہے؟ اگر بھیج دیا تو فتنہ کیا ہے؟ اس کی بھی تشریح واضح طور پہ کی، اور وہ میں یہ ہے، ابلیس نے آ کے تکبر اپنا دکھانا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا ہے، اور اس کی بڑائی تب تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک وہ حقیر اور پست نہ کر دے، عملاً پست نہ کر دے بنی آدم کو، بشر کو پست عملاً نہ کر دے. نمبر دو، بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ میں خلافت کا حقدار. آدم، ابلیس نے کیا کہا؟ میں خلافت کا حقدار. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام خلافت کے حقدار ہیں. یہ جب ہمارے پاس بات آ گئی تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا، یہی جھگڑا رہے گا. سارا جھگڑا ہے حاکمیت کا، سارا جھگڑا ہے میں کا، یہ میری چیز، یہ میری حکومت، ये मेरा हुक्म, ये मेरा ऑर्डर, मेरे मुताबिक सारी चीज़ें चलें। लिहाजा इबलीस इसी तरह चलाना चाहता है, लेकिन खलीफतुल्लाह अल्लाह के मुताबिक चलाना चाहता है। ये झगड़ा रहेगा। अच्छा, इबलीस फिर क्या हुआ, तकब्बुर ने उसके सारे ही सारे ईमानी पहलुओं को खा लिया। और इंशाल्लाह अब ये अगले दरसों में आएगा, जितने उसूले बुराई हैं, उसूले गुनाह हैं, यानी जड़ें हैं गुनाहों की, वो सब की सब आगाज किसने की, वो इबलीस ने आगाज की। सबसे पहले कत्ल करना, सबसे पहले इनकार करना, सबसे पहले दुश्मनी करना, शराब के उसने सबसे पहले दरख्त उगाए, उसने अंगूर से शराब सबसे पहले बनाई, उसने सबसे पहले बुत को बनाया, फिर बुतों के हवाले से उसने लोगों के दिलों में ख्यालात पैदा किए, उनसे इबादतें कराई। इस तरह से आगे हमारे पास आएगा कि इबलीस तमाम बुराइयों का फिर एक मंबा बन गया। इसलिए हर बुराई जो सादिर होती है वो इबलीस से इर्तिबात की वजह से सादिर होगी। वो कोई भी नेक बंदा हो, मोमिन हो, कोई भी हो, खता है तो इबलीस से इर्तिबात है। और खलीफतुल्लाह का इर्तिबात फ़कत इबलीस से, वो फ़कत वाहिद हस्ती है खलीफतुल्लाह। हर दौर में इंसान कामिल हर दौर में वो वाहिद हस्ती है कि जिसका इबलीस से ताल्लुक़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हतमन व हतमन दुश्मनी करेगा, लेकिन उनके माताहत तो जो हैं ये खींचातानी चलती रहेगी। इबलीस है, उसकी ज़ुर्रियत भी है और उसके लश्कर भी हैं। कुरान करीम ने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए। कुरान ने कितने अल्फाज हमारे सामने जो आए हैं इस्तेमाल किए हैं, अगर आप कुरान का सरसरी जायज़ा भी लें तो चार कलिमात हमारे पास आराम से आ जाते हैं। पहला कलिमा ज़ुर्रियत, सही है। दूसरा कलिमा जुनूद। तीसरा कलिमा अलिया, अलिया। चौथा कलिमा इखवान। इखवान शयातीन जिक्र है या नहीं, भाई हैं। पांचवा कलमा इत्तबा करने वाले उसके, सही है। छठा कलमा कह सकते हैं गावीन, अगवा हो गए जो, एक है जिन्होंने होना है या हो सकते हैं, लेकिन एक है जो अगवा हो गए। आप ये सारा का सारा लश्कर बन जाता है, इबलीस की हुकूमत ही नहीं से है। इबलीस जो सारे के सारे उमूर चला रहा है, वो किस तरह से चला रहा है, वो इसी तरीके से चला रहा है। इसको आप ज़रा अब तवज्जो से देखें, जितने मैंने आपके सामने मराहिल बयान किए, कुरान करीम और रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी है, खुद ज़ाती कोई इस्तिंबात नहीं है, ज़ाहिर कलाम से इस्तफादा किया है। लिहाजा दिक्कत इस चीज़ की तरफ करें कि इबलीस की तरफ से अब उसके खसूसी अवलिया हैं, सरपरस्त हैं। अहादीस की तरफ आ जाए तो और लफ्ज़ भी हैं, मरदातुश शयातीन, अस्हाबहू, अबालिसा, अफारीत के तस्करा इंशाल्लाह आगे आएगा। नंबर दो, इबलीस के ये जो जुनूद और लश्कर हैं, इनका ताल्लुक किन में से, ये जिन है या इंस है, इंसान है, जिन्नात है या दोनों दोनों, अहसन, दोनों में से हैं। इंसानों में भी हैं उसके नुमाइंदे और जिन्हों में भी नुमाइंदे हैं। इंसानों में नुमाइंदे कहाँ पे ज्यादा बसते हैं, हमारे आसपास हैं या नहीं, कभी कभी हम भी हो जाते हैं या नहीं, हम भी बाज़ुकात हो जाते हैं, सही है। इबलीस के मातहत जब आ जाएं और उसका पूरा एक निज़ाम फिर आगे चलता है, इसलिए जब भी कोई बुराई अंजाम देता है तो इबलीस के मातहत शयातीन में से किसी से ताल्लुक़ उसका कायम हुआ है, उसकी बुनियाद पे शर उसके जहन में आता है, वाइला शर नहीं आ सकता। और जब भी कोई खैर आता है तो मलाइका से ताल्लुक़ होने की वजह से खैर सामने आ रहा है। ये बात वाज़े हो गई। इधर एक सवाल उभारते हैं, अब ये कब तक चलता रहेगा सारा अमल, ता कयामत या ता मौत इंसान की, इंसान के ता मौत चलता रहेगा। यानी जब इंसान खैर अंजाम देने लगेगा तो फिर क्या चीज़ें आ जाएंगी मुकाबले में, फौरन रुकावटें शुरू हो जाएंगी। पहली रुकावट कहाँ पे आती है, खुद इंसानी वजूद में आती है, वसवसे की सूरत में। उसने उसको भी पार कर लिया, फिर बाहर शयातीन है या नहीं, वो आके हायल होना शुरू हो जाएंगे। फिर जैसी जितनी मकदार की नेकी उतना बड़ा मुबारजा। ये जुमला दोबारा जहन नशीन करें, जितनी मकदार की नेकी बड़ी होगी उतना शदीद मुबारजा भी शदीद होगा, नेकी छोटी मुबारजा भी छोटा होगा, झगड़ा भी शयातीन से क्या होगा, टकराव भी शयातीन से क्या होगा, छोटा होगा। जितनी बड़ी नेकी अंजाम देंगे टकराव भी बड़ा होगा। टकराव कैसा होगा? मतलब आप घर में सिर्फ अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। अब अगर खैर और बरकत और इंसानी तकाजों को मद्देनजर रखें तो कैसे खाना खिलाना चाहिए? एक छोटी सी मिसाल इसके ऊपर दिक्कत करें ताकि असल मौजू की तरफ फिर हम मुंतकिल हो जाएं। यानी आप कैसे चाहते हैं कि आपको घर में खाना खिलाया जाए? कैसे चाहेंगे? इस तरह तवज्जो करें। अगर आप चाहते हैं कि कैसे खाना खिलाएं तो क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरे साथ रहमत का सलूक किया जाए, सबसे पहले इज्जत दी जाए, जिल्लत के साथ अच्छा खाना भी कोई जायका देगा, मेहरबानी का सलूक किया जाए, नरमी का सलूक किया जाए, अच्छा माहौल हो, सही है, कोई नागवार वाकया ना उधर रोनमा हो, यही तकाजा करेंगे ना। अब उसको बिगाड़ने के लिए इबलीस कैसे आएगा? क्या वो खाने का जायका खराब कर देगा? क्योंकि वहां तक तो रसाई नहीं है उसकी। क्या वहां पे कोई चीज तोड़ फोड़ देगा, बिल्डिंग को पकड़ के जलजला बरपा कर देगा? ये चीजें तो नहीं शयातीन कर सकते। क्या कर सकते हैं शयातीन? वसवसे डाल सकते हैं। एक के अंदर ऐसी अजीबो गरीब बातें उभारेंगे, वो जुबान से सबको मुसीबत में मुब्तला कर देगा। एक के अंदर एक अजीबो गरीब हालत बरपा करेंगे, वो उससे दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू करने लग जाएगा। इधर से अब एक गालियां दे रहा है, इधर से एक शोर मचा रहा है, इधर से एक रोला डाला हुआ है, उधर से शहवत उभार रही है कि भाई जैसा भी है खा लो। एक तरफ से पता खबर मिल जाएगी कि ये तो हराम है, दूसरी तरफ से शहवत को और उभार देगा। आपने देखा कि उसके दुश्मनियां इस तरीके से हैं। ये तो छोटी सी जगह है। आपने अब खिलाना है 100 बंदों को, 100 बंदे के वसाइल आएंगे तो 100 बंदों को खिलाएंगे। अब क्या इबलीस आके काम करेंगे? कैसे यहां पे फितना? क्योंकि दुश्मनी करनी है ना, आप नेकी अंजाम देना चाहते हो, उसने रोकना है, वो रोक तो इस तरह थोड़ी सकते, आटा चोरी करके ले गया, सही है, आग ही पीछे से बुझा दी, ये काम तो नहीं करेगा वो। इबलीस खुद बहुत कुदरत चीजों में रखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने खलीफतुल्ला खुद जमीन पे करार दिया और हमें उसके मातहत करार दिया, और इबलीस उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता खलीफतुल्ला के। लिहाजा मदद खलीफतुल्लाह की जानिब से हमें मिलती रहेगी, और खलीफतुल्लाह ही की मदद अल्लाह की मदद है। लिहाजा यहाँ पे वो कैसे बहकाएगा? क्या आपको महसूस होता है? मसलन हमारे पास अगर हमने 5 बंदों को खिलाना है एक अच्छी ग़ज़ा, आजकल के हिसाब किताब के मुताबिक आप कह लें पाकिस्तानी बिलफर्ज आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपये होना चाहिए बिलफर्ज, लेकिन अगर आपने 100 बंदों को खिलाना है आपके बिलफर्ज 10 लाख रुपये होने चाहिए। अब जब 10 लाख रुपए आपके पास आ जाएं तो क्या करेगा इबलीस या उसके चीले? खुद तो वो नहीं कोई ज़्यादा हरकत करता, देखता है कि ये मुझसे ही कुछ मुशाबे है, तो फिर हल्के फुल्के छोटे बच्चों को अपने भेज देता है, या वो जो ताज़ा नहीं होते कैडिट जिन्हें रज़ाकार फ़ौज कहते हैं, वो रज़ाकार फ़ौज में से एक को भेजेगा, वही उसे गुमराह करके आ जाते हैं। मसलन वो कहेगा कि यार 10 लाख है तो तुमने ज़रूरी है कि डालडा घी डालना है, ये तुम दूसरे वाला सस्ता घी डाल दो उन्हें क्या पता लगता है, सही है। अगर ये मिर्च जो तुम 1 किलो लेके जा रहे हो इसमें 1 पाव पाउडर डाल दो उन्हें पता लगना है कि मिर्च है या पाउडर है, क्या इससे फर्क पड़ेगा, सही है। इसी तरह कहते हैं 10 लाख दिए तो सारे आज ही खर्च करने हैं, तुम्हारे घर बार का भी है खर्चा, तुम्हारा अपना भी खर्चा होता है, तुम इतनी जहमत कर रहे हो, इतनी मुशक्कत उठा रहे हो, तुम्हारे अपने भी तो कोई जहमत के पैसे होने चाहिए, तुम्हारा अपना भी तो कोई हक होना चाहिए, जो बदन का हक बनता है तो उसकी इतला थोड़ी सारों को देनी है, अब हक कितना बनता है? कहते चलो 5 लाख तो कम से कम बनता है, क्योंकि तुम माशाल्लाह मुदीर हो, सारे काम कर रहे हो, ये है फलां है, 5 लाख तुम्हारा हक बनता ही होगा। अब वो 5 लाख इस तरह से फसाद बरपा होते हैं। वो आके कोई चूल्हा नहीं बंद करता, आटा नहीं चोरी कर लेगा। लिहाजा कुरान में उसने बयान कर दिया, ला उज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्द, वो खूबसूरत मंसूबे बना के सामने लेके आएगा, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, फलां कर लो, फिर क्या है, वला उग्वियन्नहुम अजमाइन, सबको अगवा करूंगा। इसलिए जो अपने अंदर की हालत नहीं जानता कभी भी नहीं बच सकता। वो कुरान अपने साथ चिपकाई रखे, जरिए मुबारक को साथ चिपका ले, बैतुल्ला के अंदर मुंतकिल हो जाए। कुरान की हत्या की आयत कुरान में वारिद हुई कि बैतुल्ला में कताल मत करो, लेकिन अगर मुशरिकीन तुम्हें कत्ल उधर करें तो फिर तुम इन्हें मारो। मुशरिकीन उनको मारना पड़ेगा, बैतुल्ला में आके कत्ल कर रहे हैं, तो बैतुल्ला के अंदर क्या इबलीस नहीं कारामद हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतेह मक्का से पहले पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बुतखाना कहाँ था? सबसे बड़ा कुर्रे अर्ज़ का बुतखाना बैतुल्ला के अंदर था। उसका सफाया किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, वरना हज नहीं किया। वहां से जब तक वो बुतखाना उधर कायम रहा, हिजरत कर ली, मक्का पे आए नहीं लौट के दोबारा। लिहाजा जहाँ पे अल्लाह सुबहान तआला का हुक्म और अल्लाह का कानून और उसकी शरीयत और उसका फरमान जारी होगा, वो सरजमीन उन्हें अजीज फिर महसूस हुई और वहाँ मुंतकिल हो गए। लिहाजा जब ये बात आपके लिए वाज़ेह हो गई कि ये मुबारजा ता मौत, हत्ता जब मरने लगता है इंसान तो ये इबलीस आ जाता है। अब ये बात मरने वाले को पता है और इंसान को, ये रवायात ने हमें बयान की, किसी के सामने नहीं आती। इधर कुछ रो रहे होंगे, कुछ दुरूद पढ़ रहे होंगे, कुछ कुरानी आयात पढ़ रहे होंगे, कोई कह रहा होगा क़िबला रुख करो, कोई कह रहा होगा डॉक्टर को बुलाओ, कोई सीने पे हाथ मार रहा होगा, और अंदर वो बंदा क्या कर रहा है? इबलीस कहेगा कि एक दफ़ा तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे सारे दर्द से छुटकारा दे दूंगा। कहेगा क्या तेरी बात माने? क्योंकि मुझको सजदा कर ले, क्योंकि मैं तुझे सजदा करता हूँ इस शर्त पे कि सारी तकलीफें दूर हो जाए। अब यहाँ पे ये सारे कहेगा नहीं, मैं तुझे सजदा नहीं करता। वो कहेगा अगर सजदा करेगा, देखिए इस तरह की तू सेहतमंद तंदुरुस्ती हासिल कर लेगा, हमेशा सारी उम्र तो सेहतमंद नहीं हुआ, इस मुश्किल से भी निजात हो जाएगी, इससे भी निजात हो जाएगी। अब ये वाली अंदर बातें चल रही हैं, जिस पर रहमत इलाही नाजिल हो जाए वो वहाँ पर फिर उसे भगा देता है। और उस बंदे के होंठ हरकत में आपको महसूस होते हैं, यार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, मुस्कुरा उठता है, या कोई और उसके ऊपर अमल तारी होता है। अब बाज हैं कि जो सजदा कर देते हैं वो आखिरी दम तक नहीं छोड़ता, आखिरी दम तक नहीं छोड़ता। वहाँ पे ये तमाम इतकादात इंसान को फ़ायदा देते हैं कि जिसने खलीफतुल्लाह से ताल्लुक़ कायम किया तो खलीफतुल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी उसे, वो मदद आती है तो उसे छुटकारा देती है। इसकी मिसाल ऐसी है, ये हमारे बाज़ अज़ीज़ान हैं उनके साथ भी पाकिस्तान में वाक़िया हुआ कि पाकिस्तान में एक गैंग था ख़वातीन का, वो घर में आते थे और चीज़ें बेचने के हवाले से, फिर उससे बातें करते 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 इस तरह से उसके जहन को माऊफ कर देते थे या एक दायरे और हिसार में ले आते थे, वो पूरे घर का सोना उसे बेच देती थी खातून। तो इसी तरीके से अब गेट खुला, दो से तीन ख्वातीन आई, बाहर एक बंदा खड़ा है, आए और उन्होंने पहले पानी पिलाने के हवाले से, गर्मी शदीद थी और पाकिस्तान में अमूमन आप जानते हैं गर्म इलाकों में पूरी दुनिया में ही दोपहर के टाइम, तपती दोपहर में सारे लोग आराम करते हैं, सनसनाटा और सुनसान जगहें होती हैं। तो वहाँ पे अब वो खातून है कि बातें उसने शुरू की, करते 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 उसे माउफ एक किस्म का कर दिया, फिर एक के बाद एक चीज़ ला रही है, दूसरी तीसरी चौथी। इतने में एक जानने वाला बाहर से आ गया, वो आया तो उसने कोई एक आवाज़ लगाई, वो अभी दूर ही था, देख रहा है कि इस घर की तरफ आ रहा है। तो अब वो था हमसाया, उसने कहा इनका दरवाज़ा क्यों खुला है? तो दरवाज़ा उसने खोल के देखा, खुला है, कोई भी नहीं है। तो ये जो पीछे बंदा खड़ा था उसने फ़ौरन फ़ोन किया, और फ़ोन किया तो वो बुरका पहनी हुई ख़वातीन थी, वो अंदर कदम रखा है तो ख़वातीन आस्ता आस्ता चलती हुई बाहर निकली हैं। उसने भी कहा ख़वातीन आ रही हैं, साइड पे हो गया, सीधा वो ख़वातीन निकल गई। और जब अंदर आए तो हालत ही अजीब थी, यानी उन्हीं के रिश्तेदार थे तो, लेकिन हमसाए थे। और तब वो फिर सारी बात आई कि ये सारे सोने के सेट बिखरे हुए हैं, इधर एक पड़ा है, उधर एक पड़ा है, फलां चीज़ें हैं। ये जो मौत के वक्त इंसान का हाल है वो भी ऐसा ही होता है, खलीफतुल्लाह की फिर मदद आती है। ये इतकाद है हुज्जतुल्लाह के साथ, अगर हुज्जतुल्लाह से मोहब्बत और इताअत का ताल्लुक है वहाँ पे उधर से एक मदद आएगी, वरना तो क्या इंसान, वो तो सजदे भी करेगा, रुकू भी करेगा, इबलीस को मानेगा भी, और इबलीस हाथ पकड़ के उसे अपनी विलायत में ले जाएगा जहन्नम में। लिहाजा आपने मुलाहिजा किया कि ये ता मौत झगड़ा जारी है, सरजमीन जो हम जिस सरजमीन पर रह रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन के ऊपर उतारा है, और इलाहीन मुद्दत तक वक्त दिया है। उधर ये ना समझे कि आयात पढ़ देने से, बड़े बड़े दर्स देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, फ़लसफ़ा इरफान के असलाहत याद करने से बचाव हो जाएगा। बचाव कहाँ पे होगा? एक हकीकी तरतीब से दीन को थामना, और दूसरा इंसान अपने वजूद से अखलाकी नकायस दूर करे। आए, अब हम वाकई की तरफ मुंतकिल होते हैं कि आज भी हमारे पास वक्त कलील हो गया। सारा खिलाफत का झगड़ा, हमें क्या पता लगा झगड़ा असल कहाँ पे है? मसला है खिलाफत का। इबलीस कहता है मेरी खिलाफत, और इबलीस की खिलाफत का नतीजा तारीकी, जुल्मत, जुल्म सितम, गुनाह, गुनाहों की तारीकी है, मासीत इलाही के अंधेरे हैं। इबलीस की खिलाफत का मतलब क्या है? शकावत ही शकावत जमीन के ऊपर छाई हुई हो, हर तरफ गुना ही गुना नजर आएगा, बदतर से बदतर जुल्म सितम दुनिया में जन्म लेता जा रहा है। और खलीफतुल्लाह की अगर खिलाफत का हम अगर देखें, उसकी खिलाफत का क्या मतलब है? बरकात, रहमतें, अमन और सुकून, ईसार, कुर्बानी, मुआफ़ कर देना, उल्फत, मोहब्बत, कुर्बत, ये सारी की सारी कानून की इत्तबा, ये चीज़ें आ जाएंगी। हुकूमत कभी भी कानून के बगैर नहीं चलती। इबलीस भी अपना कानून जारी करवाता है, और उसके मानने वाले उसके मातहत रहेंगे या नहीं? मातहत रहेंगे। जैसे अभी इसराइल में झगड़ा चल रहा है, नीतन्याहू को वो हटाना चाह रहे हैं, अब उधर मुजाहरे चल रहे हैं, दोनों ही इबलीस हैं, दोनों ही शयातीन हैं। एक शैतान दूसरे शैतान को कह रहा है हमारे जो कानून बनाए हुए हैं उसके मुताबिक तुम हुकूमत करो। इसी तरीके से खलीफतुल्लाह भी कानून के जरिए चलाएगा, लेकिन कानून अल्लाह का, अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह की सरजमीन पे, अल्लाह ही के वली और खलीफा के जरिए से। आए, यहाँ पे कहानी उल्ट कहाँ पे हो जाएगी? यानी ये जो इस टाइम हम देखते हैं कि बातिल छाया जा रहा है, यानी इबलीस क्या है? उसकी शकावत, उसके अंधेरे, उसकी तारीकी, उसके जुल्म सितम, उसके शैतानी इबलीसी मंसूबे वो छाते जा रहे हैं या नहीं? लेकिन उसके मुकाबले में क्याम कौन कर रहा है? हक का लश्कर क्याम कर रहा है। हक के लश्कर का सरबराह कौन है? वो खलीफतुल्लाह इमाम महदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ। ये टकराव जारी है। अगर ऐसा हो जाए कि अक्सरियती लोग खलीफतुल्लाह उसको कबूल करके उसको कुव्वत दे दें और वो आश्कार हो जाए, तो फिर इबलीस का क्या बनेगा? वो शिकस्त खा जाएगा। वो शिकस्त खा गया फिर क्या होगा? शकावत ख़त्म हो जाएगी, शहवात दब जाएंगी, जुल्म सितम ख़त्म हो जाएगा, गुनाहों के फंदे और तारीकियाँ वो नापैद होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही होगा। गदीर खुम पे जब ऐलान हुआ तो इबलीस को क्या फिक्र पड़ गई? वो तो मौत वाली आवाज़ निकालते हुए रोया, चीखा, चल चलाया। इसी का तस्करा रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम ने किया है, लेकिन मैं तेज़ी से अब अहादीस आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। अलकाफ़ी की एक रिवायत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 421 में। यानी यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि मकतब तशय्यो में हुज्जत इलाही व खलीफतुल्लाह, उसका शदीद इर्तबात का क्यों तस्करा है। इतनी ताकीद आपको किसी और मकतब में नज़र आती है जो मकतब तशय्यो, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में है? हर रोज़ सलाम उसके ऊपर पढ़ने को मुस्तहब करार दिया गया है, उसके ऊपर दुरूद भेजने को, उससे ताल्लुक़, मोहब्बत, ईसार, वफादारी, फदाकारी, तरह तरह की कमालात का ताल्लुक किससे जोड़ के लो? हुज्जत इलाही से। क्यों उसे महवर और मरकज़ बनाया गया है? हमें आज पता लग गया। वाइल्ला इबलीस से जंग नहीं हो सकती। इबलीस से जंग एक ही सूरत में हो सकती है, वो कब हो सकती है? ताल्लुक़ अपना हुज्जत खुदा से जोड़ लें, ताल्लुक़ उनके अलिया से जोड़ लें कि जिनको उन्होंने अलिया बनाया है, जो उनके मुहब्बीन हैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ लें, उनके दोस्तों से ताल्लुक़ जोड़ के दोस्ती कर लें। यानी इमाम खुमैनी पसंद आने लगे, रहबर मुअज़्ज़म अच्छे लगने लगे, जनाबे फ़ातिमा मासूमा सलाम अलैहा की तअज़ीम शुरू कर दें, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़्यारत के लिए बेचैन और मुस्तरिब होकर जाने की ख्वाहिश पैदा कर लें। ये शदीद ताल्लुक़ की निशानदेही करेगा, ये इबलीस से टकरा देगा। ये मौत के वक्त जब आके सबसे आखिरी हमला और शदीद तरीन हमला वही हालत निज़ाम में होता है, उस वक्त आके जो इबलीस हरकतें करता है इंसान के साथ, वो इंसान बकिया किसी के सामने नहीं हो रही, और वहाँ पे यही इर्तबात हमें फ़ायदा देगा। आखिर खलीफतुल्लाह के हाथ तो नहीं अल्लाह ताला ने ज़मीन पे बांधे, अल्लाह ताला ने पूरी कुदरत के साथ इस्मत के मरहले पे फाइज करके अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजा, वाइल्ला तो खुदाओं दे मुताल की हिकमत तमाम ना होती। अगर इब्लीस को इतनी कुव्वत देती, खलीफतुल्लाह के पास कुव्वत नहीं है क्या? वो अपने शियों के लिए और अपने ताबईन के लिए और अपने पैरवी करने वालों के लिए मदद और हिदायत का सामान ना पैदा कर सकें? ऐसा नहीं हो सकता। इस रिवायत को देखें, इस रिवायत के बाद फिर हम एक दीगर रवायात के मजमू की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। अली बिन जाफर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो कहते हैं, समय तो अबल हसन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को मैंने ये फरमाते सुना, यकूल फरमाते हैं, लम्मा रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा, तैमन व अदियन व बनी उमैया यरकबून मिम्बराहू, कि बनी तमीम और बनी अदी, क्योंकि हज़रत अबू बकर का ताल्लुक़ कबीले तमीम से था, हज़रत उमर का ताल्लुक़ वो आदि कबीले से था, और बनु उमैया हज़रत उस्मान का ताल्लुक़ बनु उमैया से था, और उसके बाद पूरा सिलसिला मुआविया यजीद और मरवान और नस्ल मरवान ये बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहरन ऐसा इस हदीस से पता लगता है, ख्वाब में दिखाया गया। कुरान ने भी कहा ना, रईना का, कि हमने आपको रोया एक दिखाया और उसमें शजर मलगूना से फिर हमने कुरान में जिसका तस्करा वो दिखाया। तो ये ख्वाब है एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, और देखा कि बने तैम अदी और बनु मैया वो क्या है, उनके मिंबर के ऊपर चढ़े हुए हैं, यरकबूना सवार हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे। जब ये देखा, अफ़ज़ाहू अफ़ज़ाहू, फ़र्ज़ कहते हैं कि इंतहाई नापसंदीदा और नागवार गुजरना, शदीद बुरा लगने को क्या कहते हैं, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम किसको मिंबर पे देखना चाहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मिंबर पे देखना चाहते थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम को। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखना चाहते थे, लेकिन किसको देख रहे हैं, तैम से हैं, अदी से हैं, बनू मैया से हैं, तो इंतहाई शदीद नागवार गुजरा। तब फ़अन्ज़लल्लाहु तबारक व तआला कुरआनन यतअस्सा बिही, तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फिर कुरान की यह आयत नाजिल की जिसकी पैरवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रहलत तक की। और वो आयत क्या थी, इज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, वो वक्त याद करो जब हमने मलाइका से कहा सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इबलीस अबा, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार किया। सुम्मा अवहा इलैहि, फिर अल्लाह सुबहान तआला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की और फरमाया, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले इन्नी अमर, तो मैंने हुक्म दिया था, फलम उता, मेरी भी इताअत नहीं की गई, मैंने इबलीस को हुक्म दिया तो उसने इताअत की नहीं की, फला तजज़ा, इसलिए ज़्यादा गम और हुज़्न का शिकार ना हो। जज़ कहते हैं शदीद गम, शदीद गम और हुज़्न को क्या कहते हैं, जज़ुन, इसलिए ज्यादा गम और हुज़्न ना खाओ। इज़ा अमरता, जब आप भी अमर करेंगे, फी वसे फलम तो ता फी वसी का, तो आपके वसी के बारे में इताअत आपकी नहीं होगी। अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जब ऐलान किया और उम्मत मान लेती तो इबलीस तो खत्म हो जाता, तो सारे मसाइल खत्म थे। लिहाजा इबलीस को उस वक्त मुतहरिक होने की ज़रूरत थी या नहीं थी, इस हवाले से चंद वाक़यात आपकी खिदमत में ज़िक्र किए जाते हैं। इनमें से जो पहला वाक़या है, हदीस सही सनद है, शेख आसिम मोहसिनी साहब ने भी अपनी रवायात मोतबरा में इसे दर्ज कर लिया है, अगरचे नीचे एक तालीका एक एतराज़ के अतबार से इश्काल के अतबार से लिखा है, लेकिन यह अलकाफ़ी में हदीस है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 344 में। हदीस को आप सुने, कुछ हिस्सा अरबी में और बकिया उर्दू में, टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र करूँगा। इस हदीस के रावी सारे मोतबर हैं, सारे के सारे रावी मोतबर हैं, और जनाब सलमान फ़ारसी वो नकल कर रहे हैं। समय तो सलमान अल-फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हो, सुलेम बिन कैस हलाली, उन्होंने ये ज़िक्र किया है और ये उनकी किताब में भी मौजूद है, क़ायतुल असाफ़ी मज़ंदरानी हाफिज़हुल्लाह ताला के मुताबिक किताब सुलेम बिन कैस हिलाली वो मोतबर कुतुब में से ही है। इख्तलाफ है उलमा में, एक बड़ी तादाद उसको मोतबर नहीं मानती कि वो जो उन्होंने लिखी थी सुलेम ने वो पहुँची नहीं, लेकिन आयतुल सैफ़ी इस बात की कायल और दलाइल दिए हैं कि जो उन्होंने लिखी थी वो पहुँची भी है, और ये एक दलील भी बन जाती है क्योंकि इस जगह पे जो दर्ज है वो उस किताब में भी दर्ज है जो आज हमारे पास मौजूद है। बहरहाल सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। अब इस वाक़े को बहुत दिक्कत से देखें, लेकिन इसी पस मंज़र में देखें जो मैंने बयान किया है। ज़मीन मैदान मुबारजा, मैदान जंग, मैदान फितना, मैदान आजमाइश और इम्तहान है। इबलीस तकब्बुर की बुनियाद पर बड़ाई करता है और जनूद हैं उसके, उसकी ज़ुर्रियत है, उसके लश्कर हैं, उसकी हुकूमत और खिलाफत का मतलब है शकावतें, जुल्म सितम का छा जाना दुनिया पे, तरह तरह के गुनाह और मासियतों में हर एक का बुरे तरीके से मशगूल हो जाना। और इधर खलीफतुल्लाह की हुकूमत छा जाए, अमन है, बरकात हैं, नेमतें हैं, ईसार है, मोहब्बत है, उल्फत है, दरगुजर, मुआफ़ी, अक्ल, तफक्कुर, तदब्बुर, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देखें क्या हुआ। कहते हैं जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत हो गई, वह सना अन्नास मा सनाऊ, लोगों ने वो किया जो उन्होंने करना था, अंजाम दिया। व ख़ासम अबू बकर व उमर व अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और उबैदा इबन जर्राह, उन्होंने झगड़ा किया। किससे? अल अंसारा, अंसार से झगड़ पड़े। फ़ख़समूहुम बिहुज्जत अली, तो इन्होंने अंसार से झगड़ा किया अली अलैहिस्सलाम के हुज्जत होने पर, कि वह हुज्जत हैं या नहीं, हुज्जत इलाही हैं या नहीं। कालू या माशर अल अंसार, इन्होंने क्या कहा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह के एक ग्रोह अंसार, कुरैशुन अहक बिल अम्र मिनकुम, तुम्हारी नस्बत इस अम्र खिलाफत का ज़्यादा हकदार कुरैश हैं। क्यों? लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मिन कुरैश, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से थे। वल मुहाजरीन मिनहुम, और ये मुहाजिर जो हम लोग हिजरत करके मदीना में आए हैं, मदीना में क्योंकि 20% तो बहुत ज़्यादा होंगे मुहाजिर होंगे, बकिया तो अंसार थे जो उधर के रहने वाले मदीना के थे, वो क्या कहलाए? मकामी लोग अंसार। तो मुहाजरीन होंगे बहुत ज़्यादा, 20-30% ही। तो ये मुहाजरीन कहाँ से थे? कुरैश से थे। इन्नल्लाह बदा बिहिम फ़ी किताब ही, अल्लाह ने अपनी किताब में इन्हीं मुहाजरीन से आगाज़ किया। अब दलाइल देखें क्या दे रहे हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से हैं। कुरान में आगाज़ जो कुरान के नुज़ूल का हुआ और कुरान की इब्तिदा किन लोगों में हुई? वो मुहाजरीन में हुई या अंसार में हुई? मक्का में नाजिल हुआ था ना कुरान। वफ़ज़्ज़लहुम, और अल्लाह ने मुहाजरीन को अंसार पर फजीलत दी है। वक़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, अब दलील क्या फजीलत की? ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि है, अल आइमत मिन कुरैश, तमाम आइमा किन में से होंगे? कुरैश में से। शिया सुन्नी दोनों में मुतबर सही सनद रवायत है। खाला सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये दिलचस्प चीज़ है। अब सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, फरमाया फ़अतैतु अलियन, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया। वहुवा युग़स्सिलु रसूलल्लाह, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब गुस्ल दे रहे थे। फ़अख़बरतुहु बिमा सना अन्नास, लोगों ने जो किया उस सब की खबर मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहुँचाई। वक़ुल्तु, और मैंने कहा इन्ना अबा बकर अस्सा तआला मिंबरे रसूलिल्लाह, अभी अभी अबू बकर वो मिंबरे रसूल के ऊपर हैं। वल्लाहि मा यर्दा अन युबायउहु बियदिन वाहिदतिन, और कसम बखुदा लोग राज़ी नहीं हैं कि एक हाथ से बैत करें, लोग तो उन पर टूट पड़े हैं। यानी एक तरफ से आके एक हाथ लगा के एक हाथ से बैत नहीं कर रहे कि कोई मजबूरी की बैत हो। इन्नहुम ला युबायउनहु बियदिही जमीअन बियमीनिही व शिमालिही, वो सब के सब हज़रत अबू बकर की आके बैत कर रहे हैं, उनके सामने आ रहे हैं, कोई ढके छुपे पीछे से जाके हाथ लगा के नहीं जा रहे कि बाद में कि हाँ हमने बैत कर ली थी। नहीं, सामने से आ रहे हैं, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, और सारे उनके ऊपर बैत कर रहे हैं। इसलिए जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का इनकार किया वो माशरे ने इनकार किया, इसलिए माशरे पे शिया मोतरिज होता है, ना कि चंद अफराद के ऊपर मोतरिज होता है। उन्होंने साथ छोड़ दिया सब ने मिल के, यानी अक्सरियत ने साथ छोड़ दिया सिवाय चंद के। बहरहाल आगे देखें, फ़क़ाल अली, सलमान कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, या सलमान हल तदरी मन अव्वल मन बायअहू अला मिंबर रसूलिल्लाह, वो पहला शख्स कौन था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़कर बैयत की हज़रत अबू बकर के हाथों में, वो कौन था शख्स? कुल तो ला अदरी, कहा कि या अमीरुल मोमिनीन नहीं मालूम कौन था। इल्ला अन्नी राई तो फिर जुल्लत बनी साइदा। हाँ, ये जो बनी साइदा का साहिबान था सकीफा, वहाँ पे मैंने देखा था, हीना खसमत अंसार, जब अंसार झगड़ा कर रहे थे, वकाना अव्वला मन बायअहू, सबसे पहले जिसने आगे बैत की वो बशीर बिन साद था, फिर अबू उबैदा बिन जर्राह था, फिर उमर था, और फिर सालिम, फिर हज़रत उमर, और फिर सालिम जो जनाब हुज़ैफ़ा के वो ग़ुलाम थे, आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, इन्होंने बैत की। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लस्त तो असलुका अन हाजा, मैं वो सकीफा बनी साइदा वाली बैत का नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल उस वाली नहीं है मेरा, वलकिन तदरी अव्वल मन बायअहू हीना साइदा अला मिंबर रसूलिल्लाह, जब हजरत अबू बकर मिंबर के ऊपर चढ़े हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मिंबर के ऊपर आके सबसे पहले बैत किसने की, मिंबर पे आके, क्योंकि उसी के बाद तो सिलसिला शुरू हुआ। कुल तो ला, सलमान कहते मुझे, कहा मुझे नहीं मालूम, बोला कि नहीं, हाँ एक चीज याद आ रही है, रई तो शेखन कबीर हन, एक बूढ़ा शेख देखा, मुतवक्किन अला असाहू, लाठी पकड़ पकड़ के चल रहा था, नहीं चला जा रहा था, बैन आईनई ये सज्जादतन, उसकी दोनों आंखों के दरमियान बड़े बड़े सजदे के निशान थे, जो कई साल इबादतें कसरत से करता रहा, शदीदुत तशमीर है, इबादत के लिए इंतहाई जहमत और मुशक्क़त करने वाला, तो बहुत जहमत मुशक्क़त इबादत के लिए उठाने वाले उनमें से था, साइदा इलैहि, ये है कि जो चढ़ा अव्वल मन साइदा, जो चढ़ के जिसने आके हजरत अबू बकर के हाथों में बैत की, वह हुआ यबकी, और रो रहा था, वह यकूल, और ये अल्लाह की बारगाह में कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यमुतनी मिन अद्दुनिया, सारी हम्द उस अल्लाह के लिए जिसने इस वक्त तक मुझको मौत नहीं दी, हत्ता रअईतु फी हाज़ल मकान, ए अबू बकर मैंने आपकी ज़ियारत इस जगह पे कर ली, उस वक्त तक मुझे मौत नहीं दी, उबसुत यदक, अपना हाथ बढ़ाइए, हजरत अबू बकर ने भी हाथ बढ़ाया, बसाता यदहू फबायअहू, उसने सबसे पहले बैत की, सुम्मा नज़ला, फिर सलमान कहते हैं वो उतरा बूढ़ा शख्स इबादत गुजार, व खरजा मिनल मस्जिद, मस्जिद से चला गया, फ़क़ाल अलीयुन, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल तदरी मन हुआ, जानते हो कौन था, कुल तो अल्लाह, नहीं जानता कौन था, लेकिन वलकत साअतनी मकालत हो, मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी, ये जो उसने आखिरी दुआ पढ़ी थी ना, वो बहुत बुरी बात लगी मुझे, कअन्नहु शामितुन बिमौत नबी, गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के ऊपर खुश हो रहा है, उनकी रहलत पे खुश, शामित कहते हैं अपने दुश्मन को किसी सख्त मुसीबत और मुश्किल में देखना, उसकी वजह से जो खुशी का एहसास होता है उसे कहते हैं शमाता, ये एक बदअखलाकी की सिफत है, दुश्मन को भी इस तरह से देख के इंसान जो है वो ना फराह का शिकार हो। बहरहाल कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत तो इस गम के ऊपर गोया कि खुश था वो, क्योंकि कलिमात ही हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मौत नहीं दी, मैंने आपकी ज़ियारत मिंबर के ऊपर कर ली, मिंबर पे ना होना रसूलुल्लाह का उस वक्त के मोमिनीन और उस दिन, वो तो गम और हुज़्न का बायस है या नहीं, जिस ज़ात को हम देखा करते थे उस जगह पे, अब वो ज़ात नहीं है। फ़क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ाका इबलीस लअनहुल्लाह, वो बूढ़ा शख्स इबलीस था, अल्लाह की उस पर लानत हो, अखबरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़बर दी है, अन्ना इबलीस व रऊसा अस्हाब ही, इबलीस और उसके जितने रईस सरदार थे, होती है ना शख्सियात बड़े बड़े सरदारों के साथ, मतलब हमारे वज़ीर आज़म साथ हैं तो एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, एक तरफ वज़ीर दाखिला हैं, एक तरफ वज़ीर आला हैं, अब ये सारे के सारे रऊसा कहलाएंगे, सही, तो रऊसा भी उसके साथ थे, और कौन थे, ये जो रऊसा थे उनके असहाब के जो इबलीस के पैरों हैं उनके इन सरदारों के ज़रिए से इबलीस ने उन्हें पकड़ता है, शहीदु नस्व रसूलिल्लाह इय्या लिन्नास बिग़दीर खुम बे अम्रिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से गदीर खुम के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझको रहबर और खलीफा और पूरे उम्मत इस्लामिया का हाकिम करार दिया था और नस्ब किया था मुझे अल्लाह के हुक्म से, इसका मुशाहिदा कर उस वक्त इबलीस भी कर रहा था और उसके रऊसा भी कर रहे थे, फअखबरहुम अन्नी औला बिहिम मिन अनफुसिहिम, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में लोगों को खबर दी कि मैं इनकी जानों पर इनसे ज़्यादा औलवियत और हक़ रखता हूँ, और वह अमरहुम और लोगों को हुक्म दिया कि जो शख्स इस वाक़े को देख रहा है, ये पैगाम अयुबल्लिग़ शाहिद अल-गायब, वो गायब तक पहुँचा दे। फ़अक़बला इला इबलीस अबालिसा तो हूँ व मरदा तो अस्हाब ही। इबलीस के अबालिसा, ये उसकी ख़ास नस्ल या ख़ास उसके बंदे अबालिसा कहलाते हैं, जिनमें इबलीसियत का जो वस्फ है बहुत आशकार, सिफत आशकार हो। और जो सरकश तरीन उसके असहाब हैं, वो सारे भागे भागे आए इबलीस के पास और कहा, फ़कालु इन्ना हाज़ी उम्मतुन, ये उम्मत मरहूमतुन, इनके ऊपर तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। वह मासूमतुन, ये तो सब गुनाहों से बच गए। वह मालका वह वला लना अलैहिम सबीलुन, ना तेरे लिए अब कोई राह है ना हमारे लिए कोई राह है कि हम इस उम्मत को बहका सकें, ये तो हमारा खात्मा हो गया। यानी रोने पीटने लग गए। कद उलिमु इमामहुम, इन्हें इनके इमाम का बता दिया गया है। व मफज़ाउहुम बाद नबीहिम, और इन्होंने अपने नबी के बाद किसके पास पनाह लेनी है, इस उम्मत को बता दिया गया है। फ़ंतलक़ा इबलीस लअनहुल्लाह कईबन हज़ीनन, इबलीस लअनहुल्लाह, उसको तो एक किस्म का हार्ट अटैक हो गया, इंतहाई गमज़दा और टेंशन लिए हुए, स्ट्रेस लिए हुए, प्रेशर लिए हुए वहाँ से चला गया। वह अखबरानी रसूलुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़बर दी है, अन्नहु लौ कुबिज़ा अन्नन्नास युबायउन अबा बकरिन फ़ी ज़ुल्लत बनी साइदा बादमा यख्तसिबूना, कि अगर मेरी रिहलत के बाद लोगों ने हज़रत अबू बकर की बैत की सकीफ़ा बनी साइदा के अंदर, और झगड़ा करने के बाद, सकीफ़ा बनी साइदा में झगड़ा करने के बाद, सुम्मा यातून अल मस्जिद, और फिर वो लोग मस्जिद में आए, फ़यकूनु अव्वल मन युबायउहु अला मिम्बरी, तो मेरे मिम्बर के ऊपर सबसे पहले चढ़कर जो हज़रत अबू बकर के हाथ में बैत करेगा वो इबलीस लअनहुल्लाह, वो इबलीस लअनहुल्लाह होगा। फिर सूरत रजुलिन शेखिन, एक बूढ़े शख्स की शक्ल में आएगा, मुशम्मिरिन, इंतहाई इबादत गुजार और इबादत के लिए जहमत मुशक्क़त करने वाली सूरत इख्तियार करके, यकूलु कज़ा व कज़ा, और यही जुमले वो पढ़ेगा। सुम्मा यखरुजो, फिर वो निकलेगा, फ़यजमाओ शयातीनहु व अबालिसतहु, और फिर सारे के सारे वो अपने शयातीन और अबालिसा को जमा करेगा। फ़यनखुरो, और फिर एक नाक से भयानक तरीन आवाज़ निकालेगा। व यकसाओ, और उन लोगों के दरमियान आके, नखर कहते हैं, नखरा यानी इन खुशूम से आवाज़ों का निकालना, और ये जो कलेमा है इसके बाद यकसाओ, यकसाओ के बारे में वारिद हुआ है कि इसका मतलब होता है कि इसका मतलब, हाँ, एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर मारना या दुम के ऊपर ज़ोर से पाँव मारना। सही है, ज़रबा यदिन अरिजिन अला दुब्र शहीन, यानी किसी चीज़ के पीछे एक हाथ से, यानी थपकी देना। सही है, उसने आवाज़ निकाली, अब इन सबको क्या थपकियां दे रहे हैं, आ जाओ, खुशी से नहीं होता और इस्तकबाल कर रहा हो। वह यकूलु कुल्लन ज़अमतुम, सबको वो कहेगा, तुम ये गुमान कर देते अन्ना लैसा अलैहिम सबीलुन, मेरे लिए कोई राह नहीं है इनके ऊपर। फ़कैफ़ा रअयतुम मा सनअतु बिहिम, देखा मैंने क्या इनके साथ किया। हत्ता तरकू अम्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का अम्र इन्होंने तर्क कर दिया। वताअतहु, अल्लाह की इताअत को तर्क किया। वमा अमरहुम बिरसूलिल्लाह, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था उसको इन्होंने तर्क कर दिया। अगला जो वाक़या है वो मुख्तसर सा है, वो भी आप सुनते जाएं, उसमें सिर्फ तर्जमा बयान कर देता हूँ, और वो भी मुतबर हदीस है कि ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ उठाया रोज़े गदीर, सरखा इबलीस फ़ी जुनूद ही सरखतन, तो अपने लश्कर के अंदर इबलीस अपने लश्करों में, अपने असहाब में इंतहाई भयानक चीख के साथ चीखा। फ़लम यबक़ मिन्हुम अहदुन फ़ी बर्रिन वला बहरिन, ना खुश्की में कोई बाकी बचा, ना तरी में, समंदर में कोई बाकी बचा, इल्ला अताहू, सारे उसके पास आ गए। चीख ही ऐसी मारी, क्योंकि इंशाल्लाह कुरानी आयात में आएगा इबलीस का ताल्लुक वही वाला है सबके साथ, उसकी आवाज़ और सारी सिग्नल पहुँचते हैं, वो सारे जमा हो जाते हैं। फ़कालू या सैयदहुम व मौलाहुम, ए हमारे सैयद व सरदार, ए हमारे सैयद, ए हमारे मौला, इबलीस को आके वो कह रहे हैं, मादा दहा का, ये क्या भयानक चीख तूने मारी है। فما سمعنا لك صرخة اوحش من صرختك، اس سے تو وحشت ناک ترین آج تک تیری چیخ ہم نے نہیں سنی، اے ہمارے مولا سردار کیا ہو گیا آپ کو؟ فقال لهم فعل هذا النبي فعلا، آج کے دن اس نبی نے ایک ایسا کام کر دیا ہے، اگر یہ انجام پا گیا، ان تم انجام پا گیا، لم يعص الله ابدا، کبھی بھی اللہ کی معصیت نہیں ہوگی، کبھی بھی اللہ کی معصیت نہیں ہوگی. فقالوا يا سيدهم، انہوں نے کہا کہ اے ان کے سید، انت كنت لآدم سید، آپ یعنی اے ہمارے سید و سردار مولا آقا، آپ تو آدم کے ساتھ بھی تھے. فلما قال المنافقون انه ينطق عن الهوى، کہ اب بتائے نا، آدم علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کو تو سارا تجربہ ہے بنی آدم کو کیسے گھیرنا ہے. اسی ٹائم ابلیس نے چند بنی آدم کو گھیر لیا، اسی میدان میں کھڑے کھڑے غدیر خم کے. یہ صحیح سند ہمارے ہاں روایت ہے، صحیح سند معتبر الکافی کی روایت ہے. منافقین نے کہا انہ ينطق عن الہوا، یہ نبی جو بول رہا ہے یہ تو ہوائے نفس کے اوپر بول رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ہم پہ نعوذ باللہ مسلط کرنا چاہتا ہے. وقال احدهما لصاحبه، ان دو میں سے ایک نے اپنے دوست کو ساتھ والے کو کہا، اما ترى عينيه، کیا اس نبی کی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہے، تدوران في رأسه، جس طرح مجنونوں کی، دیوانوں کی، پاگلوں کی آنکھیں گھومتی ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح سے اس کی آنکھیں دیکھو، اس آنکھیں چہرے کے اندر گھوم رہی ہیں، کنہ مجنون، گویا کہ یہ مجنون ہو گیا جو یہ باتیں کر رہا ہے، دیکھو کیا بات کر رہا ہے. یعنون رسول اللہ، ان کی مراد کون تھے نعوذ باللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرخ ابلیس صرختن بطرب، جب یہ جملے سنے نا پھر تو طرب میں آ گیا. طرب کہتے ہیں خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جانا اور پھر رقص و سرور کرنا، ہوتے ہیں نا اونچی اونچی عجیب و غریب آوازیں لگانے لگ جاتے ہیں اور پھر چھلانگیں مارتے ہیں، کوئی ہاتھ ہلاتا ہے، کوئی عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، اس طرح سے طرب کی حالت میں آ گیا ابلیس. یہ دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کوئی عین ٹائم پہ ختم ہونے سے پہلے، ٹائم ختم ہونے سے پہلے میچ برابر فٹ بال کا جا رہا ہو، کوئی گول کر دے، پھر دیکھیں کیا ان کی حالت ہوتی. یہ انداز ہے طرب کا. تو فجمع اولیاءہ، اس نے پھر سب کو جمع کیا اور کہا، اما علمت انی کنت لآدم، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آدم کے ساتھ تھا، من قبل، اس سے پہلے، قالوا نعم، کہ بالکل آپ نے یہ بتایا تھا. کہا کہ قال آدم نقض العہد، آدم علیہ السلام سے میں نے عہد کو توڑوایا، انہوں نے توڑ دیا جو اللہ سے عہد باندھا تھا، البتہ نزول ارض سے پہلے، زمین پہ اترنے سے پہلے، خلقت کے آغاز کی بات. ولم یکفر بالرب، لیکن انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی تھی، کفر نہیں کیا تھا اپنے رب کا. وہاؤلاء نقضوا العہد، انہوں نے تو عہد بھی توڑا ہے، وکفروا، اور رسول صلی اللہ علیہ بالرسول، رسول اللہ کا کفر بھی کیا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہیں. فلما قبض رسول اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو لوگوں نے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو قائم کر دیا ان کی جگہ پہ. لبس ابلیس، اس دن جب امیر المومنین علیہ السلام کے جگہ پہ کوئی اور آ کے ممبر کے اوپر بیٹھا اور خلافت کو سنبھالا، اس دن ابلیس نے تاج الملک کے بادشاہوں والا تاج اپنے سر کے اوپر پہنا. ونصب ممبر، ایک بڑا سا اپنا ممبر بچھایا. وقعد بالوثبت، اور چھلانگ مار کے اس ممبر کے اوپر بیٹھ گیا. وجمع خیلہ ورجلہ، اور تمام کے تمام اپنے خیل سواریوں کو، رجل پاؤں، جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ تو اپنے خیل اور رجل سے ان کو بہکا، یعنی ان تمام آلات اور سرداران و اپنے بڑے بڑے رؤسائے شیاطین کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ لہم اطربو، انہیں حکم دیا، اب خوب تم بھی خوشیاں مناؤ، آج خوشی منانے کا دن ہے. لا یطاع اللہ حتی یقوم الامام، اب جب تک دوبارہ امام آ کے اس منصب پہ قائم نہیں ہوتا تب تک اللہ کی اطاعت کرہ ارض کے اوپر نہیں ہوگی. وطلع ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے پھر یہ تلاوت ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس ظَنَّهُ، ابلیس نے ان کے اوپر اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ، اور انہوں نے پھر ابلیس کی اتباع کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنین کے एक ग्रोह के, फिर जनाब बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये इस आयत की तावील है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रहलत हो गई तो इब्लीस ने ये गुमान किया था, जब उन्होंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्नहु यंतिकु अनिल हवा, कि ये क्या है, हवाए नफ्स नऊज़ु बिल्लाह ऐलान कर रहे हैं। तो फ़ज़न्न बिहिम इब्लीस ज़न्नन, तो इब्लीस ने जो उस वक्त गुमान किया था, फ़सद्दकू ज़न्नहू, तो इन लोगों ने आज के दिन क्या है वो गुमान सच कर दिखाया, यानी इब्लीस ने उनके जहनों में ये वसवसा डाला कि जुबान से जुमले बोलेंगे रसूलुल्लाह हवाए नफ्स से कर रहे हैं ऐलान, और ये नहीं मानना ऐलान। और आज अमली सूरत में उन्होंने ये बात अमली सूरत में करके इब्लीस के जन की तस्दीक कर दी। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।